ओम शांति। भारत में बहुत लंबे समय से छोटे छोटे बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाती है, जिनमें पशु पक्षी जानवर सभी बोलते हैं, उनमें भी भावनाएं होती है और वो सभी बहुत सी नैतिक शिक्षाएं देते हैं। ऐसी एक कहानी है कि किसी जंगल में एक बंदर रहता था और वो बंदर बहुत शरारती था। यहां कूदता, वहां कूदता, इस पेड़ पर, उस पेड़ पर, इस डाली पर, उस डाली पर, सारा के सारा जंगल रोज घूमता रहता, खेलता रहता। और एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो बंदर एक गांव के पास आ पहुंचा और उस गांव में उसने देखा एक घर है और उस घर में टेबल पर बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं, लाल लाल। तो उसे बहुत लालच होता है और वो कूद कर जाता है और वो सारे सारे एप्पल ले लेता है और बहुत खुशी खुशी से जंगल लौटता है, जैसे उसने बहुत बड़ी आज कमाई कर ली। और जब वो एप्पल खाने लगता है तो वो बहुत कड़क, सख्त, हार्ड, उनको सूंघता है, उसमें कोई भी खुशबू नहीं है, क्योंकि वो जो एप्पल थे लकड़ी के बने हुए थे। परंतु वो बंदर उन्हें पकड़ के रखता है दोनों हाथों से और सारे जंगल में घूमता है ये दिखाते हुए सभी को कि मेरे पास इतने सारे एप्पल हैं। पर जब भी खाने की कोशिश करता है वो तो कड़क है, क्योंकि वो वुडन है, लकड़ी के बने हुए एप्पल है। परंतु वो छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है। सब लोग उसको देखते हैं और उसको गर्व होता है कि मेरे पास इतना सारा खजाना है जो मैं किसी को नहीं दूंगा, और जोर से पकड़ता है। वो गुजरता है, उसे भूख भी लगती है और वहां बहुत अच्छे अच्छे केले हैं, फल है जंगल में, परंतु वो अपने एप्पल छोड़ना नहीं चाहता और उसके हाथ भी दुखने लगते हैं, पर एप्पल छोड़ना नहीं चाहता, एप्पल को पकड़ के रखता है जोर से। हाथ दुखने लगते हैं, थक जाता है, बहुत तेज भूख लगती है, फिर भी नहीं छोड़ता है और जहां तहां से जाता है वहां पर सुगंधित बहुत रसीले फल उसे दिखते हैं, परंतु वो एप्पल को कैसे छोड़े। सारे दिन भर घूमते रहता है एप्पल लेकर, थक जाता है, इतनी भूख लगती है कि एक समय आता है कि फिर वो एप्पल फेंक देता है, क्योंकि वो लकड़ी के थे और जाकर जो केले लगे थे एक एक पकड़ के खाने लगता है। ऐसी ये कहानी पंचतंत्र में आती है। वो बंदर उन एप्पल्स को पकड़े हुआ था जो छूटे थे, वो बंदर उन फलों को पकड़े था जो खाए नहीं जा सकते थे, जिनमें केवल दिखावा था, रंग था, कलर था बस। परंतु जब भूख लगी तो उसे वो फेंकने ही पड़े लास्ट में, क्योंकि पकड़े पकड़े वो थक गया था, आखिर कब तक पकड़े। और अंततः वो दूसरे जितने एप्पल्स थे, जंगल के फल थे, वो खाता है, तब कहीं जाकर उसकी भूख मिटती है। यह है बहुत ही छोटी सी कहानी, बड़े बड़े राज इसमें छिपे हैं। यदि मनुष्य के जीवन को देखे तो उसने भी अपने हाथों में बहुत सारी वो चीजें पकड़ी है जो आर्टिफिशियल है, जो नकली है, जो झूठ है, और जिससे कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होती, शांत नहीं होती। उसे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, पर वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, अपने जो झूठे एप्पल्स है। पर एक समय फिर भी ऐसा आता है जीवन में, जब आत्मा इतनी प्यासी हो जाती है, तब उसे वो झूठा छोड़ना ही पड़ता है, और वो पकड़ना पड़ता है, वो धारण करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है जिससे उसकी प्यास मिटे। ये वो स्थान है जहां आप सब आए हैं, अपने अपने हाथों में जो झूठे फल पकड़े हुए हैं, संसार के संबंध, संसार के रिश्ते नाते, संसार का पद पोजीशन, संसार के पैसे, सब कुछ वो पकड़े तो है, परंतु आत्मा उससे तृप्त नहीं हुई है। अब आप सब इस स्थान पर आए हैं तो यहां से वो ले जाना है जो आत्मा की प्यास मिटा दे, यहां से वो ले जाना है। उसके बाद फिर कभी भूख न लगे, ऐसी अविनाशी इम्पेरिशेबल प्राप्तियां यहां पर है, ऐसा अविनाशी फल, इम्पेरिशेबल फ्रूट इस स्थान पर है, और वो फ्रूट है खुशी, और वो फ्रूट है आनंद, और वो फ्रूट है हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। तो जो झूठा हाथ में है उसे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं है, परंतु इसलिए क्योंकि जो मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है, जो मिलने वाला है वो कई गुना श्रेष्ठ है, और उसी से सोल तृप्त होगी। तो इस ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में जैसे ही आप आए, आपको यह अनुभव हुआ होगा कि यहां कोई एक दैवी शक्ति है, द डिवाइन पावर, जिसने यहां आते ही मन को शांत कर दिया, स्थिर कर दिया। ऐसा कितनों को लगा कि यहां आते ही मन शांत हो गया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, किसी ने कुछ अभी बोला नहीं, किसी क्लास को अभी सुना नहीं, केवल आते ही, क्योंकि ये जो स्थान है यहां पर परमात्म कार्य चालू है, ये स्थान साधारण स्थान नहीं है। संसार में बड़े बड़े तीर्थ है, ये तीर्थों का तीर्थ है, इसलिए यहां आते ही मन शांत होता है। इसलिए ये वो स्थान है कि जहां आत्मा आते ही रिचार्ज हो जाती है, शक्ति से भर जाती है, पावर से भर जाती है, एनर्जी से भर जाती है। दिस इज द चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन है। आत्मा की जो बैटरी है डिस्चार्ज हो गई है और उसे चार्जिंग की आवश्यकता है, वो चार्जिंग उसका यहां पर होता है। तो जीवन का जो परम लक्ष्य है और सारी मनुष्यता जिसके लिए भाग रही है, दौड़ रही है, वो है खुशी, वो है हैप्पीनेस। कहां मिलेगी ये खुशी, कहां मिलेगी ये हैप्पीनेस, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बचपन से लेके तो अंत तक व्यक्ति इसी एक चीज की खोज करता है, वो ढूंढता है रिश्तों में, संबंधों में, वो ढूंढता है सांसारिक पदार्थों में, वो ढूंढता है पैसों में, वो ढूंढता है घर में, संपत्ति में, वो ढूंढता है पद पोजीशन में, प्रतिष्ठा में, सांसारिक इच्छाओं में। पर ये संसार की सारी इच्छाएं उसे और ये अतृप्त कर देती है, ये सांसारिक और सारी इच्छाएं और ये बेचैन करके रख देती है। क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जिसमें मन में वो खुशी आ जाए जिसकी सारा संसार खोज कर रहा है? तो इस सत्र में हम चर्चा करेंगे खुशी का द्वार, खुशी का दरवाजा, द गेट ऑफ हैप्पीनेस। इंग्लिश में शब्द है गॉड, GOD। इसमें 26 अक्षर है। G अर्थात 7th अल्फाबेट, O 15th अल्फाबेट, D 4th अल्फाबेट, टोटल 26। इसलिए 26 शब्द कई धर्मों में बड़ा ऊंचा माना गया, भगवान के लिए कहा गया है। इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई से चर्चा करें, एक और कहानी याद आ रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता संग्रह गीतांजलि में एक कविता लिखी है, जिस कविता में वर्णन है कि लेखक कवि कहता है, मैं भगवान की तलाश में था, भगवान को ढूंढ रहा था, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, कई हजारों साल से भगवान को ढूंढ रहा था। कविता में कवि लिखता है, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर गॉड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। हजारों वर्ष से भगवान को ढूंढ रहा था, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, और अचानक एक दिन आसमान में देखा एक तारा है और मुझे लगा शायद वो भगवान का घर होगा। और कवि उस तारे के पास पहुंचता है और वहां पर उसे सीढ़ियां नजर आती है, सीढ़ियों पर चढ़ता है। उसे यकीन नहीं होता, क्या वास्तव में मैं भगवान को पालूंगा? और वहां एक दरवाजा है जहां पर लिखा है हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर। उसे बहुत खुशी होती है, जन्म जन्म से जिसकी खोज थी, जन्म जन्म जिसे पाने के लिए तड़प रहे थे, ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे, वो मिल गया, स्वयं भगवान मिल गया। द क्वेस्ट ऑफ गॉड पूरी हो रही है, भगवान की कोच पूरी हो रही है। दरवाजा ऊपर लिखा है भगवान का घर। अब वो इतना खुश हो जाता है, बस दस्तक देने ही लगता है, ठक ठक नॉक करने ही लगता है, तो एकदम से रुक जाता है। उसे लगता है यदि भगवान ने सही में दरवाजा खोल लिया तो, यदि भगवान ने सही में दरवाजा खोल लिया तो फिर मेरी खोज का क्या होगा? ये जो खोज करने की आदत है, ये जो मैं भटक रहा हूं, ये यहां वहां जा रहा हूं, उसका क्या होगा? एकदम से घबरा जाता है कि कहीं भगवान ही सही में हो गया तो मेरी खोज तो बंद हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा भगवान को पाने के बाद? उसको एकदम से डर लगता है, अपने चप्पल निकालता है हाथों में और चुपचाप नीचे आता है ताकि कोई सुन ना ले, क्योंकि यही अगर भगवान का घर है और भगवान मुझसे मिल ले तो फिर आगे क्या होगा? भय, डर। चुपचाप चप्पल लेके दबे पांव से नीचे उतरता है और फिर अपनी खोज चालू करता है भगवान को ढूंढने की। यहां ढूंढता है, वहां ढूंढता है और भगवान को ढूंढ रहा है, परंतु अब उसको पता है भगवान वहां रहता है, जानबूझकर वहां नहीं जाता। बाकी सब जगह ढूंढता है, एक भी स्थान नहीं छोड़ता, बाकी सब जगह ढूंढ रहा हो. एंड द क्वेस्ट इज ऑन एंड द सर्च इज ऑन एंड आई नो दैट गॉड इज देयर बट आई फियर टू गो. पर मुझे भय लगता है वहां जाने के लिए. आप सब जहां पर आए हो ये भी उसी भगवान का घर है. इसलिए अभी यहां से जाने के बाद ढूंढना बंद, या उसी कवि की तरह ढूंढते रहेंगे और पता रहेंगे वहां है, पर वहां जाने से डर लगता है क्योंकि अगर भगवान ही मिल गया तो फिर उसकी हर बात माननी पड़ेगी. अगर भगवान ही मिल गया तो खोज का क्या होगा? अगर भगवान ही मिल गया और यही सत्य है तो मेरा आगे क्या होगा? कहीं ये डर तो नहीं है? इसके लिए बाकी सब जगह जाओ, ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना, क्योंकि वहां पर कौन है? स्वयं भगवान. ऐसा तो नहीं? तो जैसे हमने कहा, खुशी वहीं हो सकती है जहां भगवान है. हैप्पीनेस इज देयर वेयर गॉड इज. यदि भगवान ही नहीं और खुशी चाहते हैं, असंभव है, क्योंकि स्वयं खुश की खुशी का सागर वो है, ओशन ऑफ हैप्पीनेस स्वयं भगवान है. तो जैसे कहा जी ओ डी गॉड, जी में 7, ओ 15, डी 4, 26 अल्फाबेट्स है. उसी तरह यदि खुशी एक भवन है, अ पैलेस, तो इस खुशी तक पहुंचने के 26 दरवाजे हैं, 26 गेट्स, और इन्हीं 26 गेट्स की हम चर्चा करेंगे. किसी भी दरवाजे से चले जाओ, इनमें से एक भी यदि ले लिया जाए तो खुशी की प्राप्ति होगी. और सबसे पहला है एक्सेप्टेंस, द फर्स्ट गेट टू हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, अपने आप को स्वीकार करना. मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं. मेरा जो शारीरिक रूप है उस रूप को स्वीकार करता हूं. जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको स्वीकार करता हूं. जो पेरेंट्स है, जो घर मिला, जो स्थान वर्तमान में है, जिस तरह के रिलेटिव्स है, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिस जॉब, जो जॉब मैं कर रहा हूं, वो सब कुछ मैं स्वीकार करता हूं. एट प्रेजेंट रिजेक्शन की फीलिंग है, एंड रिजेक्शन इज नेगेटिविटी, एक्सेप्टेंस इज पॉजिटिविटी. स्वयं को ही स्वीकार करना. जब तक मैं स्वयं को नहीं स्वीकार करता, जीवन में खुशी आ नहीं सकती. ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्वयं को ही स्वीकार नहीं किया है. हमारे पास ओपीडी में, हॉस्पिटल में ऐसे कुछ पेशेंट्स आते हैं, यंग, वो कहते हैं कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, मेरा कान ठीक नहीं है, मेरी नाक ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं दिखता, और बहुत दुखी है. बीच में तो एक कहीं दूर से डॉक्टर आई थी, वो कहती थी कि मुझे मेल बनना है, जेंडर चेंज सर्जरी, शरीर को ही स्वीकार नहीं किया है. इतना रिजेक्शन है स्वयं के प्रति. यदि खुश होना है जीवन में तो स्वीकार करना पड़ेगा, मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, जो भी मेरी बुद्धि है, आई एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस डजंट मीन स्टॉपिंग, एक्सेप्टेंस डजंट मीन डिफीट. स्वीकार कर लेना मतलब ये नहीं कि मैं अभी बस यहीं रुक जाऊंगा, स्वीकार कर लेना मतलब ये नहीं कि मैं प्रगति नहीं करूंगा, उन्नति नहीं करूंगा, प्रोग्रेस नहीं करूंगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, जो है जैसा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। एक तो स्वयं को स्वीकार करना है, दूसरा जो मेरे साथ है, पति पत्नी बच्चे मित्र संबंधी ऑफिस जॉब बॉस सीनियर कॉलीग्स जूनियर्स, आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम। जैसे मुझ में कमियां है उनमें भी कमियां हैं, जैसे मुझ में कुछ विशेषताएं हैं उनमें भी कुछ ऐसी विशेषताएं जो अब तक मैंने देखी नहीं है। नहीं तो मनुष्य की अवगुणी दृष्टि होती है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्वीकार ही नहीं किया है, जो कहते हैं ये गुड फॉर नथिंग, इनको कुछ नहीं आता है। स्वीकार करना। तीसरा, परिस्थितियों को स्वीकार करना, सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जो कुछ जीवन में हो रहा है मुझे सिखाने के लिए आ रहा है, इसलिए मुझे दुखी नहीं होना है। अलग अलग सीन्स जो जीवन में आ रहे हैं, दिस इज अ ड्रामा, एक ड्रामा है, एक खेल है जिसमें सीन आ रहे हैं, नए नए दृश्य आ रहे हैं, एक एक दृश्य को मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज प्रोग्रेस, बट फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट गेट टू हैप्पीनेस इज एक्सेप्टेंस। स्वयं को स्वीकार करना, दूसरों को स्वीकार करना, परिस्थितियों को स्वीकार करना, समय को स्वीकार करना। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, वंस ओन वीकनेसेस। आई एक्सेप्ट कि मुझ में ये कमी है, आई एक्सेप्ट मुझे अहंकार बहुत है, आई एक्सेप्ट लॉट ऑफ ईगो, आई एक्सेप्ट जेलसी है। दूसरा आगे जाता है तो बेचैनी होती है, किसी को कुछ ज्यादा मिलता है तो दुख होता है, कोई खुश होता है तो हम दुखी होते हैं। ये संस्कार है, ये आदत है, ये हैबिट है, ये नेचर बन गया है। आई एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसको स्वीकार करता हूं। जैसे ही स्वीकार करेंगे तुरंत मन में विचार आएगा, अब इससे मुक्त कैसे हो, अब मार्ग क्या है, व्हाट इज द वे आउट। इसके लिए जीवन में स्वीकार करना है, बहुत सारी बातें स्वीकार करनी पड़ेगी। बिटर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ, एक भाई हमारे पास कुछ दिन पहले ओपीडी में आया था, उनका जवान लड़का एक्सीडेंट एंड डेथ ऑन द स्पॉट, शॉकिंग न्यूज थी। उनके घर में फोन आया कि बेटा एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट डेथ, हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए, कुछ नहीं, वहीं पे खत्म हो चुका है। वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट जीवन के हर सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि खुशी चाहिए तो वो सारी चीजें जो जीवन में आ रही है, सारे दृश्य, सारी घटनाएं, सारे सर्कमस्टांस, सारी परिस्थितियां, अपनी कमजोरी, स्वयं जो मैं हूं, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली मॉरली सोशली, और दूसरे जैसे हैं मेरे आसपास रहने वाले, एक स्थान पर रहने वाले दो व्यक्ति, दोनों में ही संघर्ष है, टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, और कारण कहीं ना कहीं दोनों भी है, दोनों का अहंकार ईगो, उसको थोड़ा कम करना है। तो खुशी का पहला दरवाजा कौन सा है, इसको खोलते ही खुशी के भवन में जो प्रवेश करेंगे वो है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। दूसरा, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस अर्थात अच्छा करना, भलाई करना, परोपकार करना। जैसे उदाहरण है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो जो लड़की है उसके पास स्वीट्स है, मिठाई, और जो लड़का है उसके पास कंचे है, मार्बल्स। तो वो लड़का उससे कहता है, लड़की से, तुम मुझे अपने स्वीट्स दे दो, मैं तुम्हें अपने मार्बल दे दूंगा। तो वो छोटी लड़की बहुत भोली है, उसने कहा ठीक है, और वो अपने सारे स्वीट्स उस लड़के को दे देती है। और वो लड़का सोचता है कि मेरे पास एक सबसे बड़ा मार्बल है, वो मैं नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा छोटे छोटे। और वो बाकी सब दे देता है, वो बड़ा वाला मार्बल नहीं देता है। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। वो जो लड़की है छोटी सी आराम से सो जाती है। ये जो लड़का है ये जागा हुआ है, बेचैन है। वो सोचता है कि जैसे मैंने ये मार्बल रख लिया, शायद उसने भी सबसे बड़ा वाला स्वीट नहीं दिया होगा मुझे। उसने भी जो बड़ा वाला स्वीट है खुद ही रखा होगा, मुझे नहीं दिया होगा, इसलिए बेचैन है। बेचैनी का कारण न देना, बेचैनी का कारण स्वार्थ। जो हम करते हैं हमको लगता है सभी हमारे साथ वैसा ही कर रहे हैं। इसके लिए स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस, छोटे छोटे चीजें, किसी की मदद कर देना, किसी को खुशी दे देना, किसी को वो दे देना जो उसके पास है नहीं, परोपकार, भलाई करना, एक्ट्स ऑफ गुडनेस। हम देखते हैं कई बार कुछ लोग अस्पताल में आते हैं और हर एक पेशेंट को एक एक फूल देकर चले जाते हैं, अनरिलेटेड, उनका कोई संबंध नहीं है, वो ना उनका कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं है, केवल आए, फूल दे दिया और चले गए। स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस। जैसे ही हम कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हार्ट एक्सपांड्स। ऑल एक्सपांशन इज हैप्पीनेस, ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। जितना जितना हार्ट एक्सपांड होगा उतनी खुशी होगी, और जितना जितना हार्ट छोटा होगा, संकुचित होगा, मृत्यु होगी। इसके लिए यदि जीवन में खुशी चाहिए तो क्या करना है? परोपकार अर्थात भलाई, अर्थात कल्याण, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मेनी, फॉर द वेलफेयर ऑफ मेनी, कईयों के कल्याण के लिए। जगत तृतीयाय च, संसार के कल्याण के लिए। सो द सेकंड गेट कौन सा? बेनिवोलेंस। द थर्ड गेट टू हैप्पीनेस, चॉइस। हैप्पीनेस क्या है? हमारी चॉइस है, हम डिसाइड करेंगे आज खुश रहना है या दुखी रहना है। इट इज अ डिसीजन। चांस नहीं है, भाग्य नहीं है, नियति नहीं है, हमारा क्या है? चॉइस है, वी डिसाइड, चुनाव है। जैसे एक व्यक्ति था जो निरंतर खुश रहता था, हमेशा ही खुश रहता था, एक कोई मुस्लिम फकीर सूफी, निरंतर खुश रहता था, निरंतर। वो उसका शिष्य एक बार उससे पूछता है, ऐसा क्या है आप निरंतर कैसे खुश रहते हो? आपके पास कौन सी जादू है, कौन सा मंत्र है कि कुछ भी हो जाए कभी दुखी होता ही नहीं? तो वो कहता है कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया था। मेरे गुरु का नाम अब्दुल्ला था और उन्होंने मुझे सिखाया था कि वो जब सुबह उठते थे रोज तो अपने आप से प्रश्न पूछते थे, हे अब्दुल्ला, व्हाट डू यू वांट, खुशी या दुख? और फिर अपने आप को उत्तर देते थे, नहीं, आज मुझे खुशी चाहिए, आई चूज हैप्पीनेस। और अपने आप सारा दिन खुशी में। उठते ही ये चॉइस है हमारे पास, क्या करना है? सारे दिन भर को नष्ट कर देना है व्यर्थ की बातों में, संसार की बातों में, या अपने आप को खुश रखना है, या टाइम वेस्ट करना है, या समय को सफल करना है, क्या करना है? हमारे हाथ में है। सो हैप्पीनेस इज अ चॉइस। और एक महत्वपूर्ण बात, आई एम द इंचार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं कौन हूं? अपनी खुशी का मालिक हूं। मेरी खुशी किसी और से संबंधित नहीं है, कोई व्यक्ति से संबंधित नहीं है, किसी स्थान से संबंधित नहीं है, किसी परिस्थिति से संबंधित नहीं है। पर्सन कैन रिमेन हैप्पी इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस विद द वर्स्ट ऑफ द पीपल एंड इन द वर्स्ट प्लेसेस। व्यक्ति खराब से खराब स्थान पर खुश रह सकता है, क्योंकि ये चॉइस है और ये इंटरनल स्टेज ऑफ द माइंड है। इसका बाहरी चीजों से बहुत कम संबंध है। और जैसे आपने राजयोग के शिविर में सुना होगा, आत्मा का स्वरूप क्या है? आनंद। आत्मा का स्वरूप क्या है? सुख। आत्मा का स्वरूप क्या है? शांति। आत्मा स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मेरी खुशी किसी और के हाथ में कैसे हो सकती है? किसी के बोल, किसी का व्यवहार, ये दो चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है व्यक्ति को। वर्ड्स, स्पीच एंड बिहेवियर। पर जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी खुशी तो मेरे में है, मुझ में है, संसार की बातें मुझे प्रभावित करना धीरे 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 बंद करती है। तो तीसरा गेट कौन सा है? चॉइस। मैं डिसाइड करूंगा। जैसे अभी हमने डिसाइड किया हमको यहां आना है, कई सारे लोगों ने सोचा होगा यहां आना है पर समय पर कैंसिल हो गया, कितनों का नहीं आ पाए, कुछ और प्रायोरिटी सामने आ गई। सब कुछ हमारे हाथ में है, हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। जैसे यहां अभी क्लास में बैठे हैं, कितनी एकाग्रता से हम बैठे हैं, जो बातें सुनाई जा रही है और जो सुनी एक दो दिनों में, कितनी एकाग्रता से, कितने ध्यान से हमने सुनी, कितना हमको लगा कि ये हमारे लिए कही जा रही है, या हमको लगा ये क्लासेस चालू है चलने दो हमें कोई लेना देना नहीं। व्हाट, हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मी, ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। जब ये भाव जागृत होगा अपने आप सीखना चालू हो जाएगा। तो तीसरा चॉइस, फोर्थ गेट टू हैप्पीनेस। वर्तमान समय जो सबसे ज्यादा हलचल जिसके वजह से हो रही है वो है डिजिटल वर्ल्ड। इसके लिए फोर्थ गेट है डिजिटल डिटॉक्स। लोग नेचर की ओर सेंटर पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हेल्दी बनने के लिए, नेचुरल डाइट लेने के लिए। अभी आवश्यकता है डिजिटल डिटॉक्स की। सुबह से लेकर रात तक हर व्यक्ति किस में डूबा हुआ है? मोबाइल, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन न्यूज, दिन रात। यूएस में एक स्टडी हुई कि जिसमें कई सालों पहले, अभी नहीं कई सालों पहले, 3-4 साल पहले ये पता किया गया कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव एक दिन में अपने ईमेल्स अबाउट 38 टाइम्स चेक करता है। एंड व्हाट इज द स्क्रीन टाइम, अभी क्या गिनते हैं? स्क्रीन टाइम। व्हाट इज माय स्क्रीन टाइम, कितना समय ऑनलाइन है, कितना समय स्क्रीन को देख रहे हैं। तो सुबह से लेकर रात तक एवरीवेयर सब लोग किस में डूबे हुए हैं? डिजिटल वर्ल्ड में। अगर खुशी चाहिए, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, क्या करना होगा? डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। थोड़ा सा उससे दूर होना होगा, एटलीस्ट मॉर्निंग टाइम, एटलीस्ट इवनिंग टाइम, कुछ समय बी विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ रहना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सोचना मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए आया हूं, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, लक्ष्य क्या है जीवन का, जो कुछ मैं कर रहा हूं वही लक्ष्य है, घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, पैसा है, धन है, संपत्ति है, पद है, पोजीशन है, सब कुछ है, फिर भी वैक्यूम, फिर भी एम्प्टीनेस, फिर भी ये रिक्तता क्यों? समथिंग इज मिसिंग, और वो समथिंग है स्पिरिचुअलिटी। इसलिए जितना हो सके, जितना जरूरी है उतना प्रयोग करना है, और जैसे ही वो हो गया उससे दूर हो जाना है थोड़े देर के लिए। कुछ समय पहले यहां एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस, तो उसमें एक डॉक्टर थे, वो आते ही उनका मोबाइल गुम हो गया ऑन द वे ट्रैवल में, और उन्होंने कहा 3 दिन मेरे इतने शांति से गुजरे, ग्रेटेस्ट पीस इन माई लाइफ, 3 डेज कॉन्फ्रेंस, नो मोबाइल। उसको किसी ने कहा भी ये रखो, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, लेट मी बी पीसफुल, द फर्स्ट टाइम आई अचीव्ड पीस इन माई लाइफ फॉर 3 डेज, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऑन द वे आते आते गुम हो गया। आवश्यकता है, इट्स नेसेसरी, बट विथ लिमिट, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। इसके लिए द फोर्थ गेट टू हैप्पीनेस, डिजिटल डिटॉक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कल योगा डे था, ये देखा गया है हैप्पीनेस हॉर्मोन्स ब्रेन से रिलीज होते हैं जैसे ही कोई एक्सरसाइज करता है। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, योगासन हो सकता है, और एरोबिक हो सकता है, कुछ भी। देखा गया है कि जब मूड बहुत लो है और कोई बहुत डिप्रेस्ड है और उसको कहा गया कि डू सम एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद मूड इंप्रूव्स, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाए, बहुत दुखी हो जाए, देखा गया है कि जैसे ही कोई एक्सरसाइज करता है छोटी मोटी भी, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स यहां से रिलीज होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन यहां से रिलीज होते हैं, एंड दे गिव सेंस ऑफ हैप्पीनेस। सो इन द हेक्टिक स्केड्यूल मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, और इसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? मॉर्निंग, हाफ एन आवर, 20 मिनट्स वर्कआउट। हमारी जो शरीर है, विदाउट एक्सरसाइज इट बिकम्स फ्लैबी, डल। अगर इसको चुस्त रखना है, इसको फुर्तीला रखना है, हेल्थ हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज इज मस्ट, एंड दैट इज द गेट टू हैप्पीनेस। क्योंकि बीमार होने के बाद क्या हालत होती है सबने देखा होगा, सर्दी खांसी भी हो गई, सिंपल कॉफ कोल्ड मेक्स वन डाउन, पूरा डाउन हो जाता है, शरीर में हिम्मत खत्म हो जाती है, ताकत नहीं रहती है, बुखार है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक्सरसाइज इज मस्ट टू कीप दिस बॉडी टू सोल हेल्दी। नेक्स्ट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्या करना है? अब तक जो कुछ हुआ पास्ट, फॉरगेट इट, और जो भी जीवन में लोग आए और हमको लगता है जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया, उनको क्या करना है? फॉरगिव, फॉरगिव अर्थात माफ कर देना है, पार्डन। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग वेपन फॉर हैप्पीनेस, क्योंकि हम अपने जीवन में वर्तमान में जो दुखी है पास्ट की वजह से दुखी है, पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिन्होंने हमें बहुत दुखी किया है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, ट्रॉमेटिक यूथ, बहुत बहुत दर्दनाक घटनाएं जीवन में हुई है, इसके लिए दुखी है। और हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया, बहुत सताया। जब तक हम ये सब से मुक्त नहीं हो जाते, खुश नहीं हो सकते। तो अभी हम एक योग का अभ्यास करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। और इसमें यह देखना है कि मेरे जीवन में वो सारे लोग, वो सारी घटनाएं जो बहुत दुखद है, सोरोफुल है, वो सब आंखों के सामने देखना है। और वो सारे लोग जिन्होंने बहुत दुख दिया है, उन सबको क्या करना है, माफ कर देना है। तो चले, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मन शांत, वायुमंडल शांत, मन की आंखों के सम्मुख दिखाई दे रहे हैं जीवन के सारे दुखद दृश्य, जीवन की सारी घटनाएं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी। आंखों के सम्मुख वो सारे व्यक्ति, वो सारे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे दुख दिया, कटु शब्द बोले, रॉन्ग बिहेवियर, गलत व्यवहार किया, अपनी खुशी के लिए मैं आज इन सब को माफ करता हूं। मन पर ये जो बोझ है कम हो रहा है। मन हल्का, ये जो कुछ हुआ कार्मिक अकाउंट्स था, कर्मों का हिसाब किताब था, और जो कुछ हुआ अब मैं उस सब से सीख कर आगे बढ़ूंगा। आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई फॉरगिव एवरीवन, फॉरगेट द पास्ट। अतीत में जो कुछ हुआ हो गया है, स्वप्न था, अब मेरा मन संपूर्ण शांत, स्थिर, खुशी से भरपूर, ओम शांति। जीवन में जो कुछ हुआ फुल स्टॉप। पास्ट इज पास्ट। अब उसके ऊपर दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है। हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब उससे सीख कर आगे बढ़ना है। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, 1910 शाम को 5 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, जितना उनका रिसर्च लैब थी उसमें से 1/3 एरिया आग लग गई, सब कुछ जल रहा है, इतना बड़ा सारा रिसर्च। उनका बेटा उनके पास भाग कर आता है, कहता है ये क्या हो रहा है पिताजी। एडिसन कहता है जाओ अपनी मां को भी बुला के लाओ, उसको भी ये दृश्य दिखाओ, फिर वो ऐसा दृश्य कभी नहीं देखेगी। और वो कहता है ऑल अवर मिस्टेक्स आर गेटिंग बर्नड अप, हमने जो कुछ गलतियां की अब तक सब कुछ जल रहा है। कोई दूसरा होता तो दुखी हो गया होता, रोया होता, चिल्लाया होता, हमने इतना सब जो मेहनत की सब कुछ जल रहा है। एकदम शांत। विद इन 6 मंथ्स सब कुछ फिर से खड़ा कर दिया। इस कहानी का वर्णन रीडर्स डाइजेस्ट 1952 में उनके बेटे ने लिखा कि ऐसा हुआ। एंड हाउ स्टेबल माय फादर वॉज, मेरे पिताजी कितना स्टेबल खड़े थे, सारा कुछ जल रहा था। तो जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है एक्सेप्ट, जो कुछ भी हो रहा है लर्न एंड गो अहेड। सो द गेट ऑफ हैप्पीनेस इज फॉरगेट एंड फॉरगिव। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अर्थात व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? थैंकफुलनेस। एक्सप्रेस थैंकफुलनेस फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी स्मॉल थिंग। जो कुछ हो रहा है थैंकफुल। पेरेंट्स के लिए थैंक्स, भाई बहनों को थैंक्स, बॉस को थैंक्स, साथियों को थैंक्स, जूनियर्स को थैंक्स, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू दीज सिस्टर्स ब्रह्मा कुमारीज जो यहां हमको लेके आई, थैंक्स टू पीपल हु आर हियर जो हमको सर्व कर रहे हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू गॉड। ग्रेटिट्यूड हैज गॉट पॉजिटिव एनर्जी। ग्रेटिट्यूड में क्या है? सकारात्मक ऊर्जा है। जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं माइंड शांत हो जाता है। कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया पर हमने आज तक उनको थैंक यू भी नहीं कहा है। हम थैंक यू, अगर हमारी किताब नीचे गिर जाए तो कोई उठाकर देता तो हम थैंक यू करते हैं, पर जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं उनको हमने कभी नहीं कहा। जो दूर वाले हैं उनको कहना आसान है, जो एकदम नजदीक है उनको कभी कहा है? हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ग्रेटिट्यूड। विदेश में वो लोग एक जर्नल रखते हैं जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड जर्नल। रात में सोने से पहले जिस जिस से मिले उन सबको धन्यवाद, थैंक्स 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 थैंक्स, फिल द हार्ट विथ थैंकफुलनेस। दिल को थैंक्स से भर देना है। तो अभी फिर से एक बार अलर्ट होके बैठेंगे, एकदम स्थिर, मन शांत, आंखें बंद, अब आंखों के सामने उन सभी लोगों को देखना है जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत सहयोग दिया। वो सारे लोग जो हमारे साथ रहे कठिन परिस्थितियों में, आंखों के सामने देखना है अपने पेरेंट्स को, आंखों के सामने देखना है अपने भाई बहनों को, साथियों को, पत्नी को, पति को, कितना कुछ इन सब ने मेरे लिए किया। दिल से इन सब का धन्यवाद। उस भगवान का धन्यवाद जो मुझे यहां ले आए, इन सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद, इन सभी ज्ञान सरोवर निवासियों का धन्यवाद, यहां के प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद। A deep sense of gratitude, a deep sense of thankfulness. Thanks to everyone who came in my life. उनका भी धन्यवाद जिन्होंने जीवन में बहुत विघ्न डाले, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने मेरी निंदा ग्लानी की। ये सभी मेरे शिक्षक है, टीचर्स हैं, जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी धन्यवाद। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, मेरा हृदय आज धन्यवाद के भाव से भर गया है। The attitude of gratitude Om Shanti। ये दो काम रोज करने, past events, people, forgive, forget, और दूसरा धन्यवाद, gratitude, thankfulness to everyone। उसके बाद मैं next gate to happiness, holy company, सत संग। अगर जीवन में खुशी चाहिए तो उन व्यक्तियों का संग करना है जो खुश है, अगर जीवन में खुशी चाहिए तो उन व्यक्तियों के साथ जाना है जिन्होंने कुछ पाया है, जिनको कुछ मिला है। अगर हम दुखी व्यक्तियों का संग करेंगे और दुखी होंगे। इसके लिए संग किसका करना है? श्रेष्ठ आत्माओं का संग किसका करना है? श्रेष्ठ ज्ञान का, जो ज्ञान यहां आप सुन रहे हो, दिस इज सत्संग। और सत्संग में ऐसा पावर है कि कितना भी दुखी है वो ऊपर उड़ जाएगा। इसके लिए ये जो स्थान है, एक समुद्र है सत्संग का, यहां जो भी आता है और इसमें डूबता है खुश होकर बाहर निकलता है। सत्संग यहां पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी, लिटरेचर डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऑडियो क्लासेस मिलेगी, लिटरेचर ऑडियो डिपार्टमेंट में जाते समय वो ले जाना है। स्पार्क की एकेडमी है, वहां पर कुछ विशेष साइंटिफिक बुक्स मिलेगी, जो पढ़ना चाहे वहां से ले जा सकते हैं। पढ़ना, सुनना, स्थान पर आना, व्यक्ति के साथ रहना, महान आत्माओं के साथ रहना, दिस इज ऑल सत्संग। तो जब से ही सत्संग होगा मन खुश हो जाएगा। तो द नेक्स्ट गेट ऑफ हैप्पीनेस इज होली कंपनी। अगला इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज। एक लिस्ट मिलेगी आपको 36 डिवाइन वर्च्यूज की, एक्यूरेसी, स्वीटनेस, डिसिप्लिन, इस तरह की। इनकल्केट, इनकल्केट अर्थात धारण करना है। वर्क ऑन ईच वर्च्यू एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन, एक वर्च्यू ले लिया, अब इस पर काम करना है एक हफ्ता तक कि मुझे अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है। कभी भी उठो, कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कभी भी सो जाओ, कुछ भी खाओ, नो डिसिप्लिन। जब ऐसा जीवन चल रहा है डोंट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप देखेंगे मधु यहां पे ज्ञान सरोवर में 3:30 बजे गीज बजता है, फिर 4 बजे गीज बजता है मॉर्निंग, देन मेडिटेशन, एंड देन मॉर्निंग क्लास 7 to 8, देन ब्रेकफास्ट, देन ड्यूटीज, सब कुछ, एवरीथिंग इज सो सेट। लुक एट दिस प्रोग्राम, ये जो चल रहा है शिविर, इसमें किसी को लगा कोई गड़बड़ हो रही है? किसी को लग रहा है ऊपर नीचे हो रहा है? नथिंग, परफेक्टली गोइंग ऑन। कैसे? अपने आप सब चल रहा है, अपने आप। किसी को ऐसा लग रहा है कि भोजन कम मिला या नहीं मिला, चाय नहीं मिली? अपने आप चल रहा है। ऐसा किसी को लगा कि यहां एकोमोडेशन में ठीक नहीं है कोई चीजें? अपने आप हो रहा है। कौन कर रहा है? हु इज द इंचार्ज? हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स? कुछ नहीं, सब अपने आप चालू है। क्यों? क्योंकि द सिस्टम इज डिसिप्लिन्ड। यहां पर कुछ समय पहले रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे जो एक महामंडलेश्वर थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो आश्रम है उसमें यदि 500 लोग आने हैं और 100 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो गड़बड़ हो जाती है पूरी। यहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक्स्ट्रा आ जाते हैं, अपने आप सब चलता है, क्योंकि द सिस्टम इज डिसिप्लिन्ड। इसके लिए वो इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, एक वर्च्यू लेना, उस पर काम करना। टॉलरेंस, थोड़ा सा अगर कोई, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इफ हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक ने ये सोच लिया कि मुझे टॉलरेट करना है, झगड़ा खत्म। दोनों सोचते हैं कि मैं क्यों सहन करूं, उसको सहन करना चाहिए, हम ही सहन करें क्या हर बार, देयर इज अ फाइट। सो इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, टॉलरेंस इज अ वर्च्यूज। आए उसके बाद में जे, जे इज जर्नी, इंटरनल जर्नी। कौन सी जर्नी करनी है? इंटरनल, आत्मा के अंदर जर्नी करनी है। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, क्या क्या भरा है इस सबकॉन्शियस माइंड में? हेट्रेट, जेलसी। कैन वी क्लींस दिस सबकॉन्शियस माइंड? टोटल क्लेंजिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। कैन वी प्यूरिफाई दिस सबकॉन्शियस माइंड? यू नीड इंटरनल जर्नी। एक है एक्सटर्नल जर्नी, दिस इज इंटरनल जर्नी। ये जो 3 दिन का शिविर है, दिस इज एंटायर एम इज इंटरनल जर्नी, गो विद इन। उसके बाद में नेक्स्ट गेट, कीप बिजी। क्या करना है? अपने आप को बिजी रखना है। जो लोग बिजी रहते हैं दे हैव वेरी लेस टाइम फॉर वेस्ट। जिन्होंने अपनी दिनचर्या ऐसी सेट करके रखी है कि कहीं पर भी वेस्टेज नहीं है टाइम का, गॉसिप्स, नो गॉसिप्स, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, दे आर द हाईली सक्सेसफुल पीपल। सो कीपिंग वन सेल्फ बिजी। यहां पे आपने देखा होगा सब लोग, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को व्यर्थ का कोई टाइम नहीं है। इधर की बातें, उधर की बातें, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। कीपिंग बिजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखना, माइंड शुड रिमेन बिजी, नहीं तो व्यर्थ आएगा, और व्यर्थ आएगा तो दुखी होगे, खुशी गुम हो जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती. वो अकेले थे, अनमैरिड. ही यूज्ड टू राइट लिटरेचर. अपनी ग्रंथ लिखते रहते थे. ऑल डे बिजी. उनको लोगों ने पूछा था, डज नॉट लस्ट ट्रबल यू? यू आर अ ब्रह्मचारी, आपको काम सताता नहीं है? वो कहते हैं कि काम तो रोज आता है, बट वो दरवाजे पर खड़े रहकर पूछता है मैं अंदर आऊं? मैं कहता हूं आई एम बिजी नाउ, बाद में आना. और मैं हमेशा ही बिजी रहता हूं, ताकि वो बाहर ही खड़ा रहे, अंदर आए ही ना. सो कीपिंग बिजी इज द गेट ऑफ हैप्पीनेस. अपना शेड्यूल ऐसा बना लेना जैसे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर. खाली नहीं होता, एवरी डे इज प्लान्ड. वीआईपीज आर ऑलवेज प्लान्ड. अपने आप को समझना, आई एम ऑल्सो वीआईपी, दिस इज माई टाइम टेबल, आई कैन नॉट रिमेन फ्री. सो ऑक्यूपाई यूर सेल्फ, कीप यूर सेल्फ बिजी. उसके बाद लव यूर सेल्फ. हमको हमेशा सिखाया गया दूसरों से प्रेम करो, पर सबसे पहला प्रेम तो किससे करना है? अपने आप से. FLY, फर्स्ट लव यूर सेल्फ. फ्लाई, FLY. फ्लाई मीन्स फर्स्ट लव यूर सेल्फ. दिस इज अ टॉपिक ऑफ सेमिनार. विदेश में इसके ऊपर सेमिनार होते हैं, क्योंकि अंदर गिल्ट फीलिंग, अंदर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है, नो सेल्फ लव. सो दैट इज वाई द डोर ऑफ हैप्पीनेस इज फर्स्ट लव यूर सेल्फ. एंड नेक्स्ट मोटिवेट यूर सेल्फ. अपने आप को ही मोटिवेट करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा. हम अगर गिर गए तो कोई दूसरा नहीं आएगा कि उठो. खुद ही खुद को उठाना है, खुद ही खुद को खुश रखना है, खुद ही खुद की खुशी को ढूंढना है. आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल. महानता इसमें नहीं है कि कोई गिरा ही नहीं कभी, पर महानता किसमें है? जब जब गिरो तब क्या करना है? फिर से उठ के खड़े हो जाना है. दिस इज द डोर टू हैप्पीनेस. डोर टू एंड डोर ऑफ बोथ. उसके बाद में एन, नेचर. नेचर अर्थात प्रकृति. यहां का वायुमंडल कैसा लगा आप क्लबों को? यहां आए तो इट्स गुड एटमॉस्फियर, सो प्लेजेंट. या चारों तरफ ग्रीनरी, नेचर इन इट्स परफेक्शन. दिस इज द प्लेस टू थिंक, दिस इज द प्लेस टू चर्न, टू कॉन्टेम्पलेट, दिस इज द प्लेस फॉर मेडिटेशन, दिस इज द प्लेस टू इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, अपने पूरे जीवन को देखना यहां बैठकर. इतना सुंदर वायुमंडल, इट्स अ नेचुरल एसी हियर. सो सीक नेचर. नेचर के पास जाना, जहां पहाड़ है, जहां नदी है, जहां झरने हैं, जहां समुंदर है. ऐसे वो स्थान, हर दिन, चाहे यहां या जहां आप रहते हैं वहां, गार्डन, टेरेस. लव नेचर. इस नेचर में बैठकर ही बहुत सारी आइडियाज माइंड में आएगी. द ग्रेटेस्ट पोएट्स, द ग्रेटेस्ट म्यूजिक्स वे प्रोड्यूस्ड इन नेचर. स्कल्प्टर, ये सब लोग प्रकृति प्रेमी थे. प्रकृति में आनंद है, प्रकृति में सुख है. प्रकृति में चले जाओ तो अपने आप खुशी आ जाती है जीवन में. एवरी डे हाफ एन आवर और वन आवर स्पेंड इन नेचर. चिड़ियों की आवाज सुनना, आसमान को देखना, सूरज को देखना, चांद को देखना, अपने आप मन शांत हो जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट, ऑब्जर्व साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. द नेक्स्ट गेट ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व साइलेंस. मौन. आवाज 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 आवाज, साउंड 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 साउंड, साइलेंट, मौन एंड सॉलिट्यूड, एकांत. जब तक ये दो चीजें नहीं होगी, वी आर लॉस्ट इन वर्ड्स एंड वी आर लॉस्ट इन क्राउड, भीड़ में खो जाती है आत्मा। इसके लिए दिनचर्या में 24 आवर्स में सम टाइम, मॉर्निंग पीरियड और इवनिंग पीरियड, स्टे साइलेंट, नो वर्ड्स। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि जब वो लंदन में गए तो उनको बोलने नहीं आता था इंग्लिश, डर लगता था और शर्मीले थे, शाय। पर उन्होंने लिखा, ये दिस शायनेस वॉज माई शील्ड। और उसमें एक स्टेटमेंट आता है, टेंडेंसी टू एग्जैजरेट, टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रूथ इज विथ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। व्यक्ति का स्वभाव क्या है, सत्य को सप्रेस करता है, मॉडिफाई करता है या एग्जैजरेट करता है, अतिशयोक्ति करता है, ये तीन चीजें करता है सत्य के साथ। इसके लिए साइलेंस इज मस्ट, सो ऑब्जर्व साइलेंस। उसके बाद में पी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग। वर्स्ट ऑफ द निगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव को ढूंढना बहुत बड़ी कला है। कुछ भी सही होते नहीं दिख रहा है, सब गलत हो रहा है, उसमें पॉजिटिव ढूंढ लेना, इट्स अ ग्रेट आर्ट। सो पॉजिटिविटी इज द गेट ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद में क्यू, क्विट बैड हैबिट। अभी अभी एक भाई ने अनुभव सुनाया, ऐसा ही एक शिविर था शांतिवन, शांतिवन देखा है सबने, नीचे है। ऐसे ही शिविर में एक भाई आया, वो टोबैको च्यूइंग, गुटका पता है, गुटका टोबैको, इतनी पुड़िया लेकर आया था जब पहुंचा शांतिवन में, तो ताकि यहां उसको कमी ना पड़े, क्रॉनिक टोबैको च्यूअर। और जब पहुंचा तो 7 दिन के अंदर वो सब फेंक दिया हमेशा के लिए। कितना मुश्किल है टोबैको डी एडिक्शन, उसने 7 दिन में छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। अभी कितने साल हो गए, अभी रेगुलर सब कुछ करता है, ज्ञान योग मुरली सब कुछ, इट्स अ मिरेकल। तो इस स्थान पर आकर क्या करना है, गिव अप वन बैड हैबिट, सभी करेंगे, एक बैड हैबिट छोड़ के जाना है इस स्थान में, वन सिंगल बैड हैबिट, रॉन्ग हैबिट, इमोरल हैबिट, सिनफुल हैबिट, क्योंकि दिस प्लेस हैज स्पिरिचुअल पावर्स। इस स्थान में आध्यात्मिक शक्तियां हैं, यहां जो संकल्प प्रॉमिस प्रतिज्ञा प्लेज ओथ की जाती है, संकल्प की जाता है, किया जाता है, वो सफल होगा, इट विल लीड टू सक्सेस। दिस इज अ वेरी पावरफुल प्लेस। उसके बाद में नेक्स्ट, राजयोग मेडिटेशन, जो कि आप यहां सीख रहे हैं, सुबह का सत्र शाम का सत्र मेडिटेशन, यू आर लर्निंग हियर। उसके बाद में एस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम यहीं छोड़ेंगे, इसका विस्तार नहीं करेंगे। जो भी क्लासेस यहां सुन रहे हैं आप, अलग से यहां आपको सीडी मिलेगी कि जीवन में जो तनाव है, व्हाट इज द रूट कॉज, उसको ढूंढना है और उससे अपने आप को मुक्त कर देना है, डी स्ट्रेस योर सेल्फ। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं सीखा। लर्न हाउ टू मैनेज टाइम। हर एक को एक काम दे रहे, आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स, एक लिस्ट बनानी है, कौन सी टाइम वेस्टर्स की, मेरे जीवन में कौन सी ऐसी चीजें विच आर टाइम वेस्टर्स, वेयर डू आई वेस्ट माई टाइम। टाइम जैसे करेंसी है, जैसे पैसे हम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है। वैसे जिसने समय को नष्ट किया, समय एक दिन उसको नष्ट कर देगा। द वन हु डिस्ट्रॉयज टाइम, टाइम विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन वन डे, एक दिन समय उसको खत्म कर देगा। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद में यू, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स, खुद को समझना और दूसरों को समझना, मैं कौन हूं, पति कौन है, पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, साथी कौन है, दोस्त कौन है, मित्र कौन है, संबंधी कौन है, उनका नेचर क्या है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई फ्रिक्शन, व्हाई संबंध मीठे क्यों नहीं है, कड़वाहट क्यों है, व्हाई बिटरनेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट. यहां बैठ के इतने सारे एकांत स्थान है, कहीं पर भी जाकर अपने जीवन के बारे में सोचना, कहां मैं हूं, क्या मैं हूं, क्या मुझे करना है. नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन अर्थात मन की आंखों से देखना. जो हमको बनना है उसका एक मानस चित्र निकालना है, मेंटल पिक्चर. सी दैट पिक्चर, कलर करना, उसमें भरना पावर. हमारा लक्ष्य है संपूर्ण खुशी, संपूर्ण आनंदमय, संपूर्ण शांत जीवन. अपने आप को रोज देखना कि मैं वैसा बन रहा हूं, एकदम शांत, सुखी, आनंदित. वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो हम सोचेंगे और जो हम देखेंगे वही होगा. एक व्यक्ति बहुत गरीब है पर वो देखता है कि मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया, अमीर हो गया, हो जाता है. जो हम देखेंगे, मेंटल पिक्चर, मेंटल इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करेंगे वो हो जाएगा. सो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर सक्सेस, फॉर हैप्पीनेस. उसके बाद में W, वेकिंग एंड वॉकिंग. अर्ली मॉर्निंग जागना, अमृत वेला, सुबह सुबह, जितना सुबह हो सके. और वॉकिंग, एक तो बता दिया मेडिटेशन, दूसरा बताया वॉकिंग, इसके साथ ही जोड़ा हुआ है. सुबह उठने का एक फायदा है कि हमारे पास समय बहुत ज्यादा मिलता है, लेट उठने का समय कम मिलता है. और माइंड सुबह सुबह कैसा होता है, फ्रेश. यहां आपने देखा होगा सब लोग सुबह अमृत वेला मेडिटेशन के लिए 4 o'clock, एवरीबडी इज इन द हॉल. संसार के लोग 8 बजे उठते, 7 बजे उठते, 6 बजे उठते. यहां डे स्टार्ट्स एट 3:30 इन द मॉर्निंग, नॉट जस्ट हियर, ऑल सेंटर्स. इट्स अ वेरी पावरफुल धारणा. जो आते ही माइंड फ्रेश रहता है, जो आप पढ़ोगे, जो आप करोगे मेडिटेशन, जो भी, एकदम ग्रहण हो जाएगा. प्रातः स्मरा मृदि संस्फुरदात्म तत्वम, सुबह सुबह उठ के उस आत्म तत्व का चिंतन करना. उसके बाद में एक्स इज एक्सरे. एक्सरे मीन्स खुद की चेकिंग करना, खुद ही का एक्सरे करना, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्चिंग, आत्म विश्लेषण, आत्म संश्लेषण, विश्लेषण, एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन. रात को सोने से पहले मैंने आज सारे दिन भर सब ठीक रहा, कोई गलती तो नहीं की. इसको कहते हैं चार्ट लिखना, जर्नलिंग. फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो रोज रात को सोने से पहले 13 लिस्ट बनाई थी उसने. आज किसी को दुखाया तो नहीं, मॉडरेशन इन डाइट, ह्यूमिलिटी, अहंकार तो नहीं रहा, स्थिर रहा, सत्य बोला, असत्य बोला. 13 लिस्ट बनाई थी उसने रात को सोने से पहले, चेकलिस्ट, सब ठीक रहा एंड देन स्लीप. इसको कहते हैं चार्ट, एक्सरे. एंड नेक्स्ट, योग निद्रा. योग निद्रा, सोते समय किस ढंग से हम सोते हैं, कैसे हम सोते हैं. टीवी देखते देखते सोते हैं, मोबाइल पे बात करते करते सोते हैं, वीडियो देखते देखते सोते हैं, क्या करते हुए सो रहे हैं. डिजिटल वर्ल्ड बाजू में, माइंड शांत, चेकिंग एंड देन रिलैक्स. शरीर को रिलैक्स कर देना, कोई श्रेष्ठ संकल्प ले लेना, अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स. योग निद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी विधि है, मन को शांत करके, शरीर को शांत करके सो जाना. विचार करते करते, विजुअलाइज करते करते, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर, इट इज नोन एज पावर नैप. 15 मिनट्स भी कोई योग निद्रा करता है तो 2 घंटे की नींद हो जाती है. साइंटिफिक स्टडीज इसके ऊपर बहुत सारे की हुई है. एंड लास्ट जेड, जील एंड एंथुजियाज्म. जील अर्थात उमंग, उत्साह. अगर खुशी में रहना है तो विधि क्या है, जो भी कार्य करो कैसे करना है, खुशी से करना है, आनंद से करना है. तो जैसे कहा, गॉड इस शब्द में 26 बातें हैं। वैसे खुशी के भी इज आर द डिफरेंट गेट्स। यदि अब हम जीवन में दुखी है, उदास है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, सोरोफुल है, कुछ तो करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज जागरण, अवेकनिंग, कि जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। दुखी होना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का क्या लक्ष्य है? संपूर्ण खुश होना। तो अभी लास्ट में एक फाइनल मेडिटेशन करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, गीत बजेगा और अभी आंखों के सामने जीवन के सारे वो दृश्य देखना है जो बहुत खुशी वाले थे, बहुत आनंद वाले थे, जिसमें हम बहुत खुश हो गए थे और मन आनंद से खुशी से भर गया था। वो सारे दृश्य आंखों के सामने देखना है और अपने आप को फिर से खुशी में लाना है।
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
अभी अपने स्थान पर खड़े होंगे।
The landlord say your rent is late.
हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का, एक दूसरों का।
Don't worry, be happy.
हाथ ऊपर।
Look at me, I'm happy.
So don't worry.
Don't worry.
Be happy. अपने आप को क्या कहना है? Don't worry. Be happy. Om Shanti.